नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे संविधान में मूल ढांचे पर हमला बताया। राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेचुका अगले साल 17 से 20 अप्रैल तक तीसरी नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। और क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी करते हुए फॉलो ऑन का खतरा टाला। अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 सदन के पटल पर रखे। विधि मंत्री ने जैसे ही विधेयक सदन में पेश किए तो विपक्षी दलों ने मत विभाजन की मांग की। 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसे विरोध में मत किया। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार बताया। उन्होंने विधेयक जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। श्री मेघवाल ने विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन किया और कहा है कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया। देश के प्रथम विधि मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर का वक्तव्य उद्धृत करते हुए श्री मेघवाल ने कहा है कि कोई भी संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने ये कहा है कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत राज्यों का परिसंघ है और इन विधेयकों को वापस लाना जाया चाहिए। ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा है कि इन विधेयकों से राज्य विधान सभाओं की स्वायत्तता को आघात पहुंचेगा। डीएमके नेता टीआर बालू ने विधेयकों को संघवाद के खिलाफ बताया और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक राष्ट्र एक चुनाव को देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। श्री रिजिजू ने कहा है कि ये मुद्दा किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए लाभदायक है। विधेयक को लेकर विपक्ष की आलोचना के बारे में श्री रिजिजू ने कहा है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो करीब 2 दशक तक देश में चुनाव एक साथ कराए जाते थे। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक असंवैधानिक और राज्यों की आवाज को दबाने वाला है। राष्ट्रव्यापी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुश्री सुप्रिया सुलह ने भी विधेयक की जाँच के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की मांग की। राज्यसभा ने आज भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर अपनी विशेष चर्चा फिर शुरू की। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा है कि भारत न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है बल्कि ये लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और समावेशिता समाहित है जो देश के नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देते हैं। श्री नड्डा ने कहा है कि उनकी सरकार इसी दृष्टिकोण के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान सभा के उन सभी सदस्यों का ऋणी है जिन्होंने भारतीय संविधान को आकार दिया। इस बीच उन्होंने धारा 370 को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्री कार्यनीति तैयार की है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस नीति के नतीजे सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी राज्य में भजन लाल शर्मा सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। इन परियोजनाओं में पार्वती काली सिंह और चंबल लिंक परियोजना शामिल है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में विकास को बढ़ावा देगी। अरुणाचल प्रदेश में साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हिडन पैराडाइज ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहे जाने वाला मेचुका अगले साल 17 से 20 अप्रैल तक तीसरी नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। राज्य के पर्यटन मंत्री पासांग दोर्जी सोना ने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसकी जानकारी दी। श्री सोना ने कहा है कि अरुणाचल में पहली बार होने वाली इस साहसिक दौड़ का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और दुनिया भर से प्रतिभागियों को आकर्षित करना है। पापुमपारे जिले में आज बंदरदेवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नौबंगा नाला में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार पीड़ित अपने मिथुन को देखने जंगल गया था, तभी हाथी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। 22 वर्षीय युवक को पुलिस और स्थानीय लोगों ने जंगल से बचाया और उसे इलाज के लिए ट्रिम्स नाहरलगन में ले जाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2025 से भर्ती परीक्षाओं के बजाय उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने पर विशेष ध्यान देगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार 10 नए पदों का सृजन कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। श्री प्रधान ने बताया है कि पिछले 10 साल में प्रति बच्चे पर किए जाने वाले खर्च में 130% की वृद्धि हुई है। शोधार्थियों के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता ONOS पर श्री प्रधान ने कहा है कि अब लगभग 13,000 ई जनरल विद्यार्थियों को उपलब्ध है और अगले 3 साल में सरकार इस पहल पर 6,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग पहल को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया और कहा है कि केवल एक स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध राष्ट्र का विकास कर सकता है। फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडेज फिट इंडिया आंदोलन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन देश भर में करीब 1,000 स्थानों पर किया जाएगा। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। 2019 में यह 23वें स्थान पर था। नवंबर में एक ही महीने में स्मार्टफोन निर्यात 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर एक उपलब्धि की सराहना की और इसे मेकिंग भारत स्टोरी बताया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक ने आज बिहार के बोधगया में विश्व विरासत महाबोधि मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ 14 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। बोधगया में अपने 2 घंटे के प्रवास के दौरान श्री दिसानायक स्थानीय श्रीलंका मंदिर भी गए। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने बताया है कि इन क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति और गंभीर होकर अगले 6-7 दिनों तक जारी रहने की आशंका है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। मैच के 4th दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अभी भी 193 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने कल के स्कोर 4 विकेट पर 51 रन से आगे खेलना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से KL राहुल ने सर्वाधिक 84 रन, रविंद्र जडेजा ने 77 रन बनाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।